आप लोग कापी कलम ले लीजिए और वो जो 44वीं कारिका आपने पहले पढ़ी है उस विषय को तो आपने समझ लिया है, लेकिन उसको थोड़ा सा लिख लीजिए ताकि एकदम आपका क्लियर रहेगा। तो आपने कापी कलम ले लिया होगा और मैं जो लिखाता हूँ उसको आप लिख लीजिए। द्विविधः शब्दः, क्या लिखना है? द्विविधः शब्दः, द्विविधः शब्दः, व्यंग्यः व्यंजकश्च, द्विविधः शब्दः व्यंग्यः व्यंजकश्च, द्विविधः शब्दः व्यंग्यः व्यंजकश्च। पूर्णविराम, तत्र व्यंग्यः स्फोटः, तत्र व्यंग्यः स्फोटः काम, व्यंजकश्च बैखरी ध्वनिः, व्यंजकश्च बैखरी ध्वनिः, व्यंजकश्च बैखरी ध्वनिः। पूर्णविराम, स्फोटस्य बैखरी ध्वनेश्च, स्फोटस्य बैखरी ध्वनेश्च, स्फोटस्य बैखरी ध्वनेश्च परस्परम्, स्फोटस्य बैखरी ध्वनेश्च परस्परम् व्यंग्य व्यंजक भाव संबंधः, व्यंग्य व्यंजक भाव संबंधः, स्फोटस्य बैखरी ध्वनेश्च परस्परम् व्यंग्य व्यंजक भाव संबंधः। पूर्णविराम, व्यंग्यम अर्थात, व्यंग्यम अर्थात, व्यंग्यम अर्थात यस्य शब्दस्य यस्य शब्दस्य अभिव्यक्ति ही भवति, व्यंग्यम अर्थात यस्य शब्दस्य अभिव्यक्ति ही भवति। पूर्णविराम, व्यंजकम अर्थात, ये जो व्यंग्यम लिखा है ना उसको व्यंग्यः कर देना, व्यंग्यः अर्थात यस्य शब्दस्य अभिव्यक्ति भवति। फिर लिखिए आगे पूर्णविराम दे करके, व्यंजकः अर्थात, व्यंजकः अर्थात यह शब्दः अन्यम व्यंजयति, यह शब्दः अन्यम व्यंजयति, यह शब्दः अन्यम व्यंजयति। पूर्णविराम, यह शब्दः अन्यम व्यंजयति। पूर्णविराम, व्यंजकः बराबर प्रकाशकः, व्यंजकः बराबर प्रकाशकः, व्यंजकः बराबर प्रकाशकः काम, या पूर्णविराम कर दीजिए। व्यंग्यः अर्थात, व्यंग्यः अर्थात ने बराबर का चिन्ह, व्यंग्यः बराबर प्रकाश्यः, व्यंग्यः बराबर प्रकाश्यः, व्यंग्यः बराबर प्रकाश्यः। पूर्णविराम, अब लिखिए उपादान शब्देषु बराबर, उपादान शब्देषु बराबर, उपादान शब्देषु बराबर अर्थवाचक शब्देषु, उपादान शब्देषु बराबर अर्थवाचक शब्देषु कामा शब्दविदः, शब्दविदः बराबर वैयाकरणाः, शब्दविदः बराबर वैयाकरण शब्द विदह बराबर वैयाकरण काम द्वौ शब्दौ बराबर द्वौ शब्दौ बराबर बैखरी ध्वनि शब्दः बैखरी ध्वनि शब्दः स्फोट शब्दश्च बैखरी ध्वनि शब्दः या बैखरी ध्वन्यात्मक शब्द लिख लीजिए तो और भी अच्छा होगा। बैखरी ध्वन्यात्मक शब्दः स्फोट शब्दश्च बैखरी ध्वन्यात्मक शब्दः काम स्फोट शब्दश्च बैखरी ध्वन्यात्मक शब्दः काम स्फोट शब्दश्च काम विदुः बराबर जानन्ति विदुः बराबर जानन्ति विदुः बराबर जानन्ति विदुः बराबर जानन्ति। पूर्ण विराम एकः बराबर एकः बराबर श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यः एकः बराबर श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यः एकः बराबर श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यः वैखरी ध्वन्यात्मकः शब्दः श्रोत्रेन्द्रिय ग्राह्यः वैखरी ध्वन्यात्मकः शब्दः काम वैखरी ध्वन्यात्मकः शब्दः काम फिर लिखिए शब्दानां बराबर शब्दानां बराबर शब्दानां बराबर स्फोट रूपानां चाहे स्फोट स्वरूपाणाम शब्दानाम बराबर स्फोट स्वरूपाणाम शब्दानाम बराबर स्फोट स्वरूपाणाम काम निमित्तम निमित्तम बराबर निमित्तम बराबर अभिव्यक्ति कारणम अथवा प्रकाश कारणम कुछ भी लिख सकते हैं और या फिर एक लिख लीजिए एक को ब्रैकेट में कर लीजिए निमित्तम बराबर अभिव्यक्ति कारणम ब्रैकेट में प्रकाश कारणम निमित्तम बराबर अभिव्यक्ति कारणम ब्रैकेट में प्रकाश कारणम कामा एतेन बैखरी शब्देन एतेन बैखरी शब्देन एतेन बैखरी शब्देन स्फोटः प्रकाश्यते एतेन बैखरी शब्देन स्फोटः प्रकाश्यते एतेन बैखरी शब्देन स्फोटः प्रकाश्यते कामा न तु उत्पाद्यते न तु उत्पाद्यते न तु उत्पाद्यते कामा स्फोटस्य ब्रह्मरूपतया स्फोटस्य ब्रह्मरूपतया नित्यत्वात् स्फोटस्य ब्रह्मरूपतया नित्यत्वात् स्फोटस्य ब्रह्मरूपतया नित्यत्वात् स्फोटस्य ब्रह्मरूपतया नित्यत्वात् पूर्ण विराम कर लीजिए। फिर आगे अपरः अपरः बराबर अपरः बराबर स्फोट रूपः शब्दः अपरः बराबर स्फोट रूपः शब्दः अपरः बराबर स्फोट रूपः शब्दः अर्थे प्रयुज्यते अर्थे प्रयुज्यते, अर्थे प्रयुज्यते बराबर अर्थबोधने, अर्थबोधने योग्यः, अर्थबोधने योग्यः अभिव्यज्यते, अर्थबोधने योग्यः अभिव्यज्यते, अर्थबोधने योग्यः अभिव्यज्यते, अर्थबोधने योग्यः अभिव्यज्यते, पूर्ण विराम। अब आगे जो है ना थोड़ा स्पीड बढ़ाते हुए लिखिए, अयम आशयः, अयम आशयः, अयम आशयः डैश वैखरी ध्वन्यात्मकः शब्दः, वैखरी ध्वन्यात्मकः शब्दः, वैखरी ध्वन्यात्मकः शब्दः न साक्षात् अर्थं बोधयति, न साक्षात् अर्थं बोधयति, वैखरी ध्वन्यात्मकः शब्दः न साक्षात् अर्थं बोधयति काम, अपितु अपितु स्फोट प्रकाशन द्वारा, अपितु स्फोट प्रकाशन द्वारा अर्थं बोधयति, अपितु स्फोट प्रकाशन द्वारा अर्थं बोधयति, अपितु स्फोट प्रकाशन द्वारा अर्थं बोधयति कौमा, स्फोटात्मकः शब्दः, स्फोटात्मकः शब्दः, स्फोटात्मकः शब्दः साक्षात् अर्थं बोधयति, स्फोटात्मकः शब्दः साक्षात् अर्थं बोधयति, स्फोटात्मकः शब्दः साक्षात् अर्थं बोधयति, स्फोटात्मकः शब्दः साक्षात् अर्थं बोधयति इति वैयाकरण सिद्धान्तः, इति वैयाकरण सिद्धान्तः, इति वैयाकरण सिद्धान्तः, इति वैयाकरण सिद्धान्तः, पूर्ण विराम। ये जो आपने अभी लिखा, ये जो है ना 44वीं जो कारिका है उसका मैंने शब्द शब्दार्थ बता दिया और विषय तो आपको पहले पाठ में बता ही दिया था, अब इसको देख लीजिएगा तो सारी चीजें क्लियर लग जाएंगी आपको कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक व्यंग्य शब्द एक व्यंजक शब्द, व्यंग्य शब्द होता है स्फोट और व्यंजक शब्द होता है बैखरी ध्वन्यात्मक शब्द। इसमें उपादान शब्द का मतलब हो गया कि अर्थबोधक शब्द, और शब्दविद मतलब हो गया वैयाकरण। दो सब प्रकार के शब्द होते हैं कौन, तो एक हो गया बैखरी ध्वन्यात्मक शब्द और एक हो गया स्फोटात्मक शब्द। विदुह माने जानंती, माने विदुह माने जानते हैं, और शब्दविद माने वैयाकरण। और ये जो है ना एकह एको निमित्तम शब्दानाम, तो एकह का अर्थ करना है श्रोत्रेंद्रिय ग्राह्य, माने श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा गृहित होने वाला जो बैखरी ध्वन्यात्मक शब्द है उसका, वह अर्थ है एकह का। आ शब्दानाम का अर्थ है स्फोट स्वरूपानाम शब्दानाम, स्फोट स्वरूप जो शब्द है उसका निमित्त होता है, कारण होता है, किस चीज का कारण होता है, प्रकाशन करने का कारण होता है, अभिव्यक्ति करने का कारण होता है। माने बैखरी ध्वन्यात्मक शब्द जो है वह स्फोटात्मक शब्द को प्रकाशित करता है, अभिव्यक्त करता है। यह जो ध्वन्यात्मक शब्द है वह स्फोट को प्रकाशित करता है, उत्पादित नहीं करता, क्योंकि उत्पादित जो किया जाता है वह अनित्य को किया जाता है, और स्फोटात्मक शब्द जो है वह तो ब्रह्म स्वरूप है, नित्य है, तो उसको जो है ना उत्पादित नहीं कर सकता कोई, इसलिए यहाँ पर स्फोट जो है ना वह प्रकाशित होता है, उत्पादित नहीं होता है। तो ध्वनि भी जो है ना स्फोट को प्रकाशित करती है, उत्पादित नहीं करती है, क्योंकि स्फोट शब्द जो है ब्रह्म स्वरूप है, नित्य है। फिर जो है अपरह अर्थे प्रयुज्यते, उसमें अपरह का अर्थ क्या, स्फोटात्मक शब्द है, माने दूसरा जो स्फोटात्मक शब्द है वह अर्थे प्रयुज्यते, माने अर्थ के बोध कराने में प्रयुज्यते, माने अभिव्यज्यते, अभिव्यक्त होता है, माने अर्थ बोध कराने के लिए वह स्फोटात्मक शब्द अभिव्यक्त होता है, अर्थात प्रकाशित होता है। आशय ये हुआ कि बेखरी ध्वन्यात्मक शब्द जो है वह साक्षात जो है अर्थ का बोध नहीं कराता है, अपितु स्फोटात्मक शब्द को प्रकाशित करके अर्थ का बोध कराता है, माने बाया मीडिया से बोध कराता है, परंपरा से। किंतु स्फोटात्मक शब्द जो है वह बाया मीडिया से बोध नहीं कराता, साक्षात जो है ना स्वयं अर्थ का बोध करा देता है, ये व्याकरणों का सिद्धांत है। कुल मिलाकर के संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि शब्द दो प्रकार का है व्याकरण शास्त्र में, एक है ध्वन्यात्मक शब्द, एक है स्फोटात्मक शब्द। और इसी बात को महाभाष्यकार पतंजलि ने कहा था, ये पसपसानी के शुरू में दो प्रकार के शब्द का उन्होंने भी जिक्र किया था। एक कहा था कि येनोच्चारिते न शासनालांगुल ककुद खुद विषाणी नाम संप्रत्ययो भवति स शब्द, ये स्फोट शब्द के बारे में कहा था। और दूसरा ध्वन्यात्मक शब्द के बारे में कहा था कि अथवा प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इत्युच्यते। तो ये जो दूसरा जो कहा, ये ध्वनि के बारे में कहा, ध्वन्यात्मक शब्द के बारे में, तो अब इसके आगे जो है आप इन दोनों शब्दों के बारे में, ध्वन्यात्मक शब्द के बारे में और स्फोटात्मक शब्द के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, और प्रोसेस जो है कैसे वक्ता उच्चारण करता है उसमें स्फोट शब्द की कैसे भूमिका होती है, श्रोता जो है कैसे सुनता है और अर्थ जानता है उसमें स्फोट शब्द की कैसी भूमिका होती है, ये चीज़ जो है हमने पहले आपको बता दी थी। वाक जो है, वाणी जो है वह चार प्रकार की होती है, परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, उसमें मध्यमा वाक जो है वह स्फोट स्वरूप होती है और वैखरी वाक जो होती है वह ध्वनि स्वरूप होती है, ये भी आपको जो है ध्यान में रखना होगा। तो आज का पाठ यहीं रखते हैं, और एक चीज लास्ट में कहता हूँ कि ये जो मैंने अभी लिखाया इसका फोटो खींच करके स्कैन करके जैसे भी हो व्हाट्सएप पर आप जरूर भेजिए, ये मैं देखूंगा, उसके बाद अगला पाठ आपको भेजूंगा। तो आज का पाठ हम यहीं स्थगित करते हैं।